arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन।
दक्षिण कोसल की भौगोलिक स्थिति एवं नामकरण।
हिंदुस्तान के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित दक्षिण कोसल यानी कि छत्तीसगढ़ का अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व रहा है। आज का ये छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में दक्षिण कोसल, महाकोसल, महाकांतार, दंडकारण्य आदि नामों से जाना जाता था। प्रागैतिहासिक वैदिक, मौर्य, गुप्त, राजपूत, कलचुरी, गोंड, मराठा आदि युगों में दक्षिण कोसल में समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा और यहाँ का इतिहास बदलता रहा। विदेशी आक्रमणों एवं विदेशी शासन की स्थापना से भारत में जो भी राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए उसमें छत्तीसगढ़ कोसल भी सहभागी रहा है। भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित भूभाग को छत्तीसगढ़ के नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार लगभग 17.46 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24.06 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 80.43 डिग्री से 83.38 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य है। ये राज्य पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सकरा है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,35,137 वर्ग किलोमीटर है, जो अखंड मध्य प्रदेश का लगभग 30.52% और भारत का 4.14% क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से स्पर्श करती है। प्राकृतिक आधार पर छत्तीसगढ़ का विभाजन। छत्तीसगढ़ एक विविध भौगोलिक स्थिति वाला क्षेत्र है। धरातलीय संरचना की दृष्टि से इस प्रदेश में जहां एक ओर ऊंची पर्वतमालाएं और पठार हैं, वहीं दूसरी ओर इनसे निकलने वाली नदियों के विस्तृत और उपजाऊ मैदान भी हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर संपूर्ण छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर में सतपुड़ा का उच्च समभूमि भाग, मध्य में महानदी और उसकी सहायक नदियों का मैदानी भाग और दक्षिण में बस्तर का पठार। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं उत्तर में सतपुड़ा के उच्च समभूमि भाग के बारे में। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग सतपुड़ा की उच्च समभूमि पर स्थित है। सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं नर्मदा नदी के दक्षिण में फैली हैं। इन पहाड़ियों के पश्चिम का भाग महादेव पर्वत के नाम तथा पूर्व का भाग मैकल पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये संपूर्ण क्षेत्र घने वनों से आच्छादित है। कई पर्वत श्रेणियों की समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई 4000 फुट है। ये स्थानीय स्तर पर पाट नाम से जाना जाता है, जैसे समीरा पाट, जैरगा पाट, वनगवा पाट, मैन पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट आदि नाम उल्लेखनीय है। लहसुन पाट की मैलान नामक चोटी समुद्र तट से 4025 फुट ऊंची है, जो उस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है। सतपुड़ा की बाह्य पहाड़ियों से नर्मदा, वैनगंगा नदियां निकलती हैं। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली अन्य नदियों के नाम हैं ईव, कन्हार, गोपदय, बनास, महा, मांड, शंख और हसदो। वनों की अधिकता से वर्ष भर में औसतन 60 इंच वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु शीतल एवं नमी युक्त है। भूमि की बनावट के कारण कृषि योग्य भूमि कम है। छत्तीसगढ़ का दूसरा भाग है मध्य में महानदी एवं उसकी सहायक नदियों का मैदानी भाग। महानदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है और इसका उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत। ये उत्तर पूर्व की ओर धमतरी और राजिम होती हुई बलौदा बाजार की उत्तरी सीमा पर पहुंच जाती है और इसके पश्चात पूर्व की ओर मुड़कर रायपुर को बिलासपुर जिले से अलग करती है। पहले इस नदी के जलमार्ग से कलकत्ता तक वस्तुओं का आयात निर्यात हुआ करता था। छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होने वाली अनेक वस्तुओं को महानदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग से समुद्र तट के बाजारों तक भेजा जाता था। जोंक, हसदो और शिवनाथ महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। शिवनाथ नदी दुर्ग जिले के दक्षिण पश्चिम सीमा पानाबरस क्षेत्र से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई उसकी पूर्वी सीमा का निर्माण करती है और रायपुर जिले के बलौदा बाजार तहसील के उत्तरी भाग में जाकर महानदी में मिल जाती है। शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी खारून है। बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, परंतु दक्षिण भाग में महानदी और शिवनाथ नदी बहती हैं। यहाँ की सबसे बड़ी नदी हसदो है। अन्य नदियाँ मांड, हाव, मनियारी, खारून, नीलागढ़, अरपा और आगर हैं। अरपा नदी के तट पर ही बिलासपुर स्थित है। तीसरा भाग है दक्षिण में बस्तर का पठार। भारत के मानचित्र में बस्तर की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। बस्तर की पूर्वी सीमा उड़ीसा से कोरापुर जिले से लगी हुई है। पश्चिम सीमा महाराष्ट्र प्रांत के चंद्रपुर तथा गढ़चिरौली जिलों को स्पर्श करती है। उत्तर में यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ में संलग्न है। बस्तर की दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश के गंजाम जिले से लगती है। दक्षिण पश्चिम में दंतेवाड़ा की तराई, कुटरू, बीजापुर की उच्च समभूमि है। दक्षिण में पठार की सीमा गोदावरी के मैदान तथा पूर्व में इंद्रावती के मैदान से बनती है। बस्तर के मध्य भाग में स्थित बैलाजिला पर्वतमाला इस अंचल का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है। इसके अतिरिक्त अभूजमाड़, टिक्कनपल्ली, गोमुंडा के पहाड़, तुलसी डोंगरी, तेलीन घाटी, राव घाट तथा तरांदुल के पहाड़ हैं। इंद्रावती इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसके अतिरिक्त शबरी, शंखनी, डंकनी, नारंगी, भवरदीप, तारपेरू, कुडरा, निबरा, केंगर, मलगेट तथा चिंतल घाट नामक नदियां हैं। आइए पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में। इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग कब से और क्यों प्रारंभ हुआ, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है, क्योंकि प्राप्त शिलालेखों, ताम्रपत्रों एवं धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। प्राचीन काल में इस अंचल के लिए कोसल, दक्षिण कोसल, महाकोसल आदि नाम का प्रयोग होता था। इस भूभाग के लिए प्राचीनतम नामों एवं मतों को इन शीर्षकों में स्पष्ट किया गया है। दक्षिण कोसल, विंध्याचल के दक्षिण में स्थित कोसल नामक जनपद के विषय में प्राचीन भारतीय साहित्य में पर्याप्त जानकारी मिलती है। उत्तर कोसल यानी कि अयोध्या श्रावस्ती क्षेत्र से भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा जाने लगा। दक्षिण कोसल के अंतर्गत मध्य प्रदेश का रायपुर, बिलासपुर संभाग एवं उड़ीसा के संबलपुर, कालाहांडी, बलांगीर जिलों का अधिकांश भाग सम्मिलित था। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से का पूर्वी भाग दक्षिण कोसल कहलाता था। भारत के प्राचीन ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में दो कोसल का उल्लेख मिलता है, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। राजा नल ने दक्षिण दिशा का मार्ग बताते हुए विंध्य के दक्षिण में कोसल राज्य का उल्लेख किया है। चेदी देश के राजा बब्रुवाहन, जो अर्जुन के पुत्र थे, की राजधानी चित्रांगदपुर थी, जो कि वर्तमान में सिरपुर है। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी के काल में भारत देश अनेक जनपदों और महाजनपदों में विभक्त था। छत्तीसगढ़ का वर्तमान क्षेत्र भी दक्षिण कोसल नाम से एक पृथक प्रशासनिक इकाई का निर्माण करता था। अवदान शतक नामक एक ग्रंथ से भी ये जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे। ह्वेनसांग के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने दक्षिण कोसल की राजधानी में स्तूप का निर्माण कराया था। अशोककालीन अभिलेख सरगुजा जिले में रामगढ़ पर्वत में सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफाओं में भी प्राप्त हुए हैं। अभिलेखीय साक्ष्यों में दक्षिण कोसल का उल्लेख सर्वप्रथम गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। उसने दक्षिण पथ विजय के समय दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। छत्तीसगढ़ भूभाग के लिए प्राचीनतम नामों में ये तो था दक्षिण कोसल नाम। और आइए अब हम जानकारी देते हैं कोसल नाम की। कोसल खंड नामक एक अप्रकाशित ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन के पास कोसल नामक एक शक्तिशाली राजा था। इसके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम कोसल पड़ा। इसके वंश में भानुमंत नामक राजा हुआ, जिसकी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए कोसल का राज्य राजा दशरथ को प्राप्त हुआ था। महाकवि कालिदास द्वारा लिखित रघुवंशम में कोसल शब्द का उल्लेख हुआ है। महाकोसल। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए कनिंघम ने महाकोसल शब्द का प्रयोग किया है, किंतु किसी अभिलेखीय अथवा साहित्यिक साक्ष्य से इस क्षेत्र के लिए महाकोसल शब्द के प्रयोग की जानकारी नहीं है। कनिंघम ने भी इस नाम का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिया है। छत्तीसगढ़। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता कनिंघम के सहयोगी जेडी वेगलर ने 1873-74 ईस्वी में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। उसने एक जनश्रुति का हवाला देते हुए कहा है कि जरासंघ के काल में चर्मकारों के 36 परिवार उसके राज्य के दक्षिण में चले गए थे, जहां उन्होंने पृथक राज्य की स्थापना की, जिसे छत्तीसगढ़ नाम दिया गया, जो बाद में छत्तीसगढ़ हो गया। चेदीसगढ़। श्री राय बहादुर हीरा लाल का कथन है कि इस क्षेत्र में है वंशी कलचुरी राजा राज्य करते थे, जिन्हें चेदी वंशी भी कहा जाता है। चेदी वंश के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पहले चेदीसगढ़ और बाद में छत्तीसगढ़ हो गया। श्री वेगलर एवं हीरा लाल द्वारा प्रतिपादित नामकरण के उपरोक्त विचारों को संतोषप्रद नहीं माना जाता है। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संभवतः खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी निधि राय के काल में चारण कवि दलराम राव ने 1493 ईस्वी में किया था। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीस में न गढ़ैया रही, मर्दुमी रही न मर्दन के, फेर हिम्मत से न लड़ैया रही। इसके पश्चात रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा में सन 1689 ईस्वी में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था और बाबू रेवाराम ने लगभग 150 वर्ष पश्चात विक्रम विलास नामक ग्रंथ में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तिन में दक्षिण कोशल देसा, जहां हरि ओहु केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनिमन भावन। गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम। वस्तुतः इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ों के आधार पर प्रारंभ प्रतीत होता है। कलचुरी काल में 12 ग्रामों का एक बरहा तथा 7 बरहा का एक गढ़ होता है। ये सामान्य सिद्धांत था। ग्रामों और बरहों की संख्या कम ज्यादा भी हो जाती थी। इस प्रकार गढ़ एक प्रशासनिक इकाई थी। कहा जाता है कि शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर और दक्षिण में रायपुर के कलचुरियों के अधीन 18-18 गढ़ थे। दोनों को मिलाकर 36 गढ़ हो गए। वैसे गढ़ों की सूची घटती बढ़ती रही है, फिर भी 36 गढ़ों की एक लोकप्रिय सूची उपलब्ध है। वस्तुतः गढ़ों की संख्या साम्राज्य की शक्ति का परिचायक थी। ब्रह्मदेव के खल्लारी शिलालेख में 18 गढ़ों का उल्लेख है। अतः इस क्षेत्र का नाम गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ पढ़ना समीचीन प्रतीत होता है। चलिए हम आपको इन छत्तीसगढ़ों की सूची भी बताते हैं। रतनपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ों के नाम हैं रतनपुर, विजयपुर, खरौद, मारो, कोटगढ़, नवागढ़, सोंठी, ओखर, पंडरभट्टा, सेमरिया, मदनपुर, चापा जमींदारी में आता है ये, लाफागढ़, कोसगई, ये छुरी जमींदारी के अंतर्गत आता है, केंदागढ़, मातिनगढ़, उपरोड़ा, कडरी और करकट्टी। और इसी तरह रायपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ों की सूची इस प्रकार है। रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमेरा, दुर्ग, सरधा, सिरसा, मोहंदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंघनगढ़, सुवरमार, टेंगनागढ़ और अकलवाड़ा। इस सूची में वर्णित ये गढ़ अस्तित्व में हैं, परंतु इनके नाम और स्वरूप में समयानुसार किंचित परिवर्तन हो गया है। मराठा काल में रायपुर और रतनपुर राज्य दोनों मराठों के नियंत्रण में थे। मराठों ने नागपुर के भोसला साम्राज्य के अंतर्गत दोनों राज्यों को संयुक्त कर छत्तीसगढ़ नामकरण को स्वीकारा। अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को जिला बनाकर कप्तान एडमंड को यहाँ की प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपी। कैप्टन एग्न्यू ने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को जिला मुख्यालय बनाया। परिणामतः रायपुर छत्तीसगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ प्रांत एवं छत्तीसगढ़ डिवीजन का केंद्र बिंदु बना। छत्तीसगढ़ नामकरण का प्रस्ताव शासकीय आधार पर 1795 ईस्वी में ब्लंट ने रखा था, जिसे जेनकिंस ने जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ के रूप में प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ के नाम से लोकप्रिय हुआ। अतः छत्तीसगढ़ नामकरण मराठा काल में ही अधिक प्रचलित हुआ तथा ब्रिटिश काल में व्यवहृत हुआ। श्री प्यारेलाल गुप्त, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर पीएल मिश्र तथा डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने गढ़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ नाम को सार्थक एवं तथ्य युक्त माना है।
अरपा रेडियो.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।